नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार संशोधित जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए 54 उत्पादों की कीमतों पर लगातार पैनी नजर रख रही है। इसरो के चंद्रयान 2 ने पहली बार चंद्रमा पर सौर विस्फोट के प्रभाव का पता लगाया। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित की, जीन थेरेपी में भी सफलता हासिल की। मध्य रेलवे त्योहारों के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए 1,700 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज शाम दीपोत्सव मनाया जाएगा। और पुरुष क्रिकेट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि संशोधित जीएसटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के दूसरे चरण से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्रालय 54 उत्पादों की कीमतों पर कड़ी नजर रख रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधित कर ढांचे का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।
Except for that Portland variety of cement,
पोर्टलैंड सीमेंट में दो ब्रांडों में से एक को छोड़कर सभी सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में कटौती की है। इसी प्रकार दूध और दूध से संबंधित वस्तुओं के दाम भी कम किए हैं। 54 विशेष वस्तुओं के संबंध में हमें क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी मिल रही है। हम आश्वस्त हैं कि ऐसी प्रत्येक वस्तु का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
The benefits are being passed on to the consumer.
वित्त मंत्री ने कहा कि इन जीएसटी सुधारों का कार्यान्वयन लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद के बीच सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दरों में कमी, प्रक्रिया को सरल बनाना, स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 2 करना और वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है।
मैं यहां आपको यह बताने आई हूं कि कटौती का लाभ जो उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था वह मिल रहा है और उससे अधिक लाभ भी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इसलिए जीएसटी में की गई नई कटौती का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक वस्तु जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन से संबंधित है उसका लाभ भी उपभोक्ताओं को दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 22 सितंबर से लागू जीएसटी बचत उत्सव से समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मजबूत बनाने में जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधार हर घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिक किफायती बनाकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहे हैं। एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टेलीविजन जैसे घरेलू उपकरणों पर कर की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं। यह कदम इन उपकरणों को नागरिकों के लिए अधिक किफायती बनाने के साथ साथ घरेलू उत्पादकों को अपने बाजार का विस्तार करने में मदद कर रहा है। इसी प्रकार सरकार ने मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर कर की दर को 18% कर दिया है, जिस पर पहले 28% कर लगता था। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है बल्कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी समर्थन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर नए जीएसटी सुधारों से इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मजबूती मिल रही है। दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में घोषणा की है कि उसके चंद्रयान 2 ने अपने वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करके सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है। इस अवलोकन से चंद्रमा के वायुमंडल और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान 2 में 8 वैज्ञानिक उपकरण थे और 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। हालांकि 7 सितंबर 2019 को लैंडिंग के प्रयास के दौरान विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटर पूरी तरह से चालू है और चंद्रमा की कक्षा में काम करना जारी रखे हुए है। 10 मई 2024 को एक दुर्लभ सौर घटना के दौरान सीएमई की एक श्रृंखला ने चंद्रमा को प्रभावित किया, जिससे दिन के चंद्र बहिर्मंडल चंद्रमा के आसपास के अत्यंत पतले वायुमंडल के कुल दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि बहिर्मंडल में न्यूट्रल परमाणुओं और अणुओं का घनत्व एक परिमाण के क्रम से भी अधिक बढ़ गया, जिससे उन सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई है जिनकी प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पहले कभी पुष्टि नहीं हुई थी। इसरो ने कहा कि ये परिणाम न केवल चंद्रमा के वातावरण को लेकर वैज्ञानिक समझ को गहरा करते हैं, बल्कि भविष्य में चंद्र मिशनों और चांद पर मानव आवास के डिजाइन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दवा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर ली है। नई दिल्ली में कल 3 दिवसीय चिकित्सा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों को समाप्त करने के लिए प्रभावी है। उन्होंने बताया कि ये दवा विशेष रूप से कैंसर रोगियों और अनियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि हीमोफीलिया के उपचार में जीन थेरेपी के सफल स्वदेशी नैदानिक परीक्षण की भी जानकारी दी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे और किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होडा को टिकट दिया गया है। कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया शहर विधानसभा क्षेत्र से मोहन श्रीवास्तव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मध्य रेलवे त्योहारों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न शहरों के लिए 1,700 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि इसका उद्देश्य दिवाली और छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है।
छठ और दिवाली के लिए जो यात्री अपने परिजनों के साथ में ये त्योहार मनाना चाहते हैं, उनके लिए 1702 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सारी ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर ऐसे मुख्य स्थानकों से चलाई जा रही हैं। इनमें से 800 से अधिक ट्रेनें जो है वो यूपी, बिहार और उसी के साथ में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य जो है उनके लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी मुख्य स्थानकों पे होल्डिंग एरिया का प्रावधान किया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित होल्डिंग एरिया यात्रियों के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार ला रहा है। श्री वैष्णव कल रात स्टेशन पर त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन का निरीक्षण कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि होल्डिंग एरिया यात्री सुविधा केंद्र का हिस्सा है, जिसमें कई टिकट काउंटर और शौचालय हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज शाम दीपोत्सव मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान श्री राम के घर वापस आने की खुशी में आज शाम अयोध्या नगरी दीपों से झिलमिलाएगी।
सजा दो अवध दुल्हन सा मेरे श्री राम आए।
सरकार इस वर्ष 26,11,101 दीप प्रज्वलन कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी। इस वर्ष दीपोत्सव में लक्ष्मण किला घाट से नया घाट तक 2100 वेदाचार्य महाआरती कर एक अन्य कीर्तिमान भी बनाएंगे। साथ ही भारत में निर्मित 1100 ड्रोन की मदद से होने वाला ड्रोन शो, लेजर शो और 3D प्रोजेक्शन मुख्य आकर्षण होंगे। दीपोत्सव के दौरान एक खास शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें रामायण के 7 कांडों पर आधारित झांकियों का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और अब खेल खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व शुभमन गिल कर रहे हैं, उन्हें रोहित शर्मा के स्थान पर कप्तान नियुक्त किया गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंदौर में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम लगातार 2 हार के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गई है। इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान पर है। गुवाहाटी में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की अन्यापट फिचित प्रिचासक से होगा। साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट के बाद तन्वी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उधर मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में कल भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान कई दिनों के भीषण लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। कतर के विदेश मंत्री ने कल ये घोषणा की। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में कल दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता में ये समझौता हुआ। कतर के विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधि तत्काल संघर्ष विराम और सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा काल्मिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के बाद उन्हें भारत वापस लाने के लिए रूस में हैं। ये अवशेष गेडेन शेडुप चोई कोरलिंग मठ में स्थापित हैं, जिसे शाक्यमुनि बुद्ध के स्वर्ण निवास के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि काल्मिकिया में पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी ने भारत और रूस के बीच लोगों के आपसी संबंधों को और मजबूत किया है। उन्होंने इस आयोजन को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि यूरोप के एकमात्र बौद्ध समुदाय काल्मिक लोगों के लिए यह आस्था की ऐतिहासिक वापसी का प्रतीक है। श्री सिन्हा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज अवशेषों के साथ स्वदेश वापस आएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा की संभावना है। केरल और कर्नाटक के तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों जिनमें लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र शामिल हैं, वहां 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद लवलीन। देश भर में कल धनतेरस पर बाजारों की रौनक लगभग सभी अखबारों में सचित्र है। इस अवसर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी को दैनिक जागरण ने बाजारों में धनवर्षा बताया है। पत्र कहता है, त्योहारी उत्साह में बाजारों में उमड़े लोग, स्वदेशी सामान की जमकर की खरीदारी। दैनिक भास्कर ने वित्त मंत्री के इस बयान को दिया है कि सरकार 54 जरूरी वस्तुओं की निगरानी कर रही है। अयोध्या की तर्ज पर दिवाली का कर्तव्य पथ 1,00,000 से अधिक दीयों की रोशनी और लेजर शो से जगमगाएगा। नवभारत टाइम्स ने इसे सचित्र दिया है। लोक सत्य की सुर्खी है, कर्तव्य पथ पर दिखा आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम। उधर राजस्थान पत्रिका ने दीपोत्सव की सांस्कृतिक विविधता की जानकारी देते हुए लिखा है कि सिर्फ दीपदान नहीं, फसलों की शादी और अग्निबाण से भी मनाई जाती है दीपावली। जनसत्ता के अनुसार हरित पटाखों की बिक्री से बाजारों में बढ़ी रौनक। पत्र ने दुकानों के सामने लगी लंबी कतारों के चित्र भी दिए हैं। अमर उजाला ने आधुनिकता शीर्षक से लिखा है, रंगोली के आधुनिकता के बदलते चावल मायने, चावल के आटे से लेकर रंगों तक का सफर। पत्र के अनुसार रंगोली का इतिहास 5,000 वर्ष पुराना है, जिसमें अब आधुनिकता का रूप दिखता है। अब ब्रह्मोस की पहुंच में पाकिस्तान की 1-1 इंच जमीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस कथन को अमर उजाला ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि ब्रह्मोस का नाम सुनते ही मन में बनती है विश्वसनीयता की छवि। हरियाली खो रहे हैं दुनिया के महासागर, हिंदुस्तान ने इसे खतरे में धरती बताते हुए इस शोध को दिया है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो पृथ्वी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड खो सकती है।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार संशोधित जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए 54 उत्पादों की कीमतों पर लगातार पैनी नजर रख रही है। इसरो के चंद्रयान 2 ने पहली बार चंद्रमा पर सौर विस्फोट के प्रभाव का पता लगाया है। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित की, जीन थेरेपी में भी सफलता हासिल की। मध्य रेलवे त्योहारों के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए 1,700 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज शाम दीपोत्सव मनाया जाएगा और पुरुष क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।